पृष्ठ संख्या 380, अध्याय 24। अध्याय शीर्षक है स्वामी विवेकानंद की विश्व धर्म की अवधारणा। शीर्षक है भूमिका। धर्म में दैवी चेतना ही मूल तत्व है और यह मानव जात की बहुत ही मूल्यवान धरोहर है। धर्म के इस मूल तत्व को आदिकाल से ही विश्व के महान प्राचीन संतों ने प्राप्त किया है और वर्तमान में जो विश्व अस्तित्व में है उसमें भी अनेक संत अपने दैवी ज्ञान से विश्व को आलोकित कर रहे हैं। विश्व के अनेक भागों में अवतारों, पैगंबरों तथा धर्म के शिक्षकों का प्रादुर्भाव समय समय पर होता रहा है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इन अवतारों या देवदूतों की संख्या पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक है, जिन्होंने दैवी सत्ता की चेतना से मानव जाति को जागृत किया है। इस दैवी चेतना का प्रकाशन सर्वप्रथम उपनिषदों में देखा जा सकता है। उपनिषदों में भारतीय ऋषियों ने किसी एक देशीय तत्व चिंतन का गान नहीं किया है। इनमें सार्वभौमिक सत्ता का ऐसा उत्साह और आनंदा अनुभूति के साथ वर्णन किया गया है कि जिसमें संपूर्ण विश्व को देखा जा सकता है। उपनिषदों के पश्चात श्री कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य और महावीर स्वामी आते हैं, जिन्होंने दैवी सत्ता के वैभव का विस्तार विश्व के सभी लोगों के लिए किया। इसी तरह ग्रीस में सुकरात और प्लेटो, रोम में मार्कस ऑरेलियस, इजराइल में मूसा, पैलेस्टीन में क्राइस्ट, अरबिया में मुहम्मद साहब, पर्सिया में जोरोस्टर, चीन में लावो तजे अपने समय के आध्यात्मिक पुनर्जीवन के लिए अद्वितीय महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात आध्यात्मिक प्रकाश का एक ऐसा युग आया जिसने विश्व के लगभग सभी भागों को अपने प्रवाह में समेट लिया। इस युग की महान आत्माओं ने, जिन्होंने ईश्वर के प्रकाश और शांति को मानव के हृदय गुहा में उतारा, वे हैं पंजाब के गुरु नानक और स्वामी राम तीर्थ, उत्तर प्रदेश के तुलसीदास और कबीर, राजस्थान की मीराबाई, बंगाल के चैतन्य, राम प्रसाद, श्री कृष्ण और स्वामी विवेकानंद, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम और नामदेव, दक्षिण भारत के रामानुज और माधव, अन्य देशों में हॉलैंड के स्पिनोजा, पर्सिया के मिर्जा अली मुहम्मद, बहाउल्लाह और अब्दुल बाही, रूस के टॉलस्टॉय और ब्लावत्स्की, इंग्लैंड के कार्लाइल, रस्किन, वर्ड्सवर्थ तथा एडवर्ड कारपेंटर, जर्मनी के शोपेनहावर, हीने और गोथे, अमेरिका के वाशिंगटन, एमर्सन, जेम्स एलन और वाल्ट विटमैन हुए। वर्तमान में आए तो भारत में कुछ ऐसे आध्यात्मिक नायक उत्पन्न हुए हैं जिन्हें विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त हुई। इनमें प्रमुख नाम है महर्षि रमण, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, कृष्णमूर्ति तथा वासवानी आदि। इसी तरह ब्रिटेन में होमबलिन, फ्रांस में रोमान लोलान और पाल रिचार्ड, रूस में निकोलस रोयरिच, अमेरिका में सुंदरलैंड, मिर्जा अहमद और केटनर आदि के नाम बताए जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 381। जितने नाम ऊपर गिनाए गए हैं उनमें निश्चित रूप से कितने अन्य आध्यात्मिक महापुरुषों के नाम बिना विवाद के और भी जोड़े जा सकते हैं। फिर भी चाहे गणना में कुछ नाम छूट भी गए हों और यह सूची अपूर्ण भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि अनंत काल से मानव जात के इतिहास पर इन दिव्य विभूतियों द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक अनुभवों का प्रकाश न केवल आश्चर्यजनक रूप से फैला हुआ है, वरन इसके प्रभाव से सदैव ईश्वर मानव की उत्पत्ति भी हो रही है। धर्म उन्माद और संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण यद्यपि मानव जीवन बार बार युद्ध की अग्नि में जलता रहा, घृणा की लहर फैलती रही, मानव का रक्त धरती को लाल करता रहा, फिर भी विश्व के आध्यात्मिक नेताओं की छाया और प्रभाव मानव जात पर पड़े बिना नहीं रहा। धर्म का सर्वोच्च मूल्य और महत्व कम न हुआ, उसकी विजय मनुष्य जात पर है। धर्म पुरुषों ने यह बताया कि जब जीवन ईश्वर और मानवता के लिए समर्पित हो जाता है तब आत्मत्याग, यंत्रणा और यहाँ तक कि मृत्यु की भी वास्तविक और विशेष महत्व हो जाता है। इन धर्म पुरुषों की उत्प्रेरक शिक्षाओं और संतोषप्रद स्पर्श से असंख्य लोगों को अगणित संतोष और शांति प्राप्त हुई है। इन्होंने विश्व में जो उपदेश दिए हैं उनका यदि बहुत गहराई से अध्ययन न भी किया गया तब भी इतना तो देखा जा सकता है कि उनके उपदेश एक स्वर से यही संदेश देते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य ब्रह्मांडगत चेतना को प्राप्त करना है। इससे यह भी पता चलता है कि संपूर्ण विश्व और इसके जीव एक उसी वैश्विक चेतना में एकीकृत हैं, सभी एक ही माला के दाने हैं, सभी जीवों के जीवन में वही एक दैवी तत्व प्राप्त है, वही आत्मतत्व या विश्व चेतना जो अविभाज्य है, सर्वव्यापक है, अमर है और उसका गुण है पूर्ण शांति और पूर्णा आनंद। यदि संतों और महापुरुषों का यही अनुभव है तो मनुष्य को घृणा, बुराई और अभिमान त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर बंधुत्व और भाईचारे का दैवी दृष्टिकोण रखना चाहिए। यही सार्वभौमिक धर्म है, यही सच्चा धर्म है, यही दैवी दृष्टि वास्तविक दृष्टि है। अमरत्व की स्वतंत्रता और शांति ही स्वतंत्रता और शांति है। अब अगला शीर्षक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार विश्व धर्म की अवधारणा। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को मानव के चिंतन और जीवन का सर्वोच्च स्तर माना है। मानवता से प्रेम धर्म से प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर मनुष्य जाति में संघर्ष और घृणा का समय समय पर जो तांडव नृत्य हुआ है वह भी धर्म के कारण ही हुआ है। जीवन में दो तत्व क्रियाशील हैं, एक आकर्षण दूसरा विकर्षण। धर्म में भी ये दोनों शक्तियाँ क्रियाशील हैं। आकर्षण से प्रेम दया आदि का स्फुरण हुआ है और विकर्षण से घृणा द्वेष संघर्ष आदि। आश्चर्य की बात है कि एक ओर धर्म के अनुयायियों से शांति और प्रेम की मधुर वाणी सुनाई पड़ी है, तो दूसरी ओर उन्हीं के द्वारा घृणा और भत्रणा की वाणी मुखरित हुई है। पृष्ठ संख्या 382। वह धर्म ही रहा है जिसकी प्रेरणा से संसार में खून की नदियां बही हैं। धर्म से प्रेरित होकर मनुष्य ने जितने चिकित्सालय, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र आदि बनाए, उतने और किसी प्रेरणा से नहीं। धर्म मनुष्य जात की ही नहीं, अन्य प्राणियों तक की सेवा के लिए प्रेरित करता है। धर्म प्रेरित करके निष्ठुर कार्य भी कराता है और धर्म ही मनुष्य को कोमल बनाता है। धर्म के अतिरिक्त ऐसे कार्य और किसी प्रवृत्ति से संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि धर्म द्वारा ऐसे कार्य अतीत में भी हुए हैं और भविष्य में भी ऐसे ही होते रहेंगे। फिर भी विविध धर्मों और संप्रदायों के कलह और कोलाहल, द्वंद्व और संघर्ष, अविश्वास और ईर्ष्या द्वेष में समय समय पर इस प्रकार की वज्र गंभीर वाणियां निकली हैं, जिन्होंने इस सारे कोलाहल को दबाकर संसार में शांति और मेल की तीव्र घोषणा कर दी थी। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या धर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले उपद्रवों से छुटकारा मिल सकता है और शांति तथा मेल या धर्मों में समन्वय हो सकता है। अब अगला शीर्षक है धर्म समन्वय या विश्व धर्म की स्थापना और उसके उपाय। इसके अंतर्गत शीर्षक है क्या यह संभव है, धार्मिक संघर्षों के बीच क्या सामंजस्य का अविच्छिन्न राज्य होना संभव है। वर्तमान शताब्दी के अंत में इस समन्वय को लेकर संसार में एक विवाद चल पड़ा है। अनेक योजनाएं इसके लिए प्रस्तावित की जा रही हैं, उन्हें कार्य रूप देने के लिए भी अनेक चेष्टाएं की जा रही हैं, परंतु यह कठिन कार्य है। परंतु जितना कठिन कार्य बाह्य जीवन में शांति और साम्य स्थापित करना है, उससे कई गुना कठिन कार्य मनुष्य के अंतर जगत में शांति स्थापित करना है। कारण यह है कि लोगों ने धर्म को केवल शब्दों का खेल बना दिया है, उसे जीवन में परिणत करने की वस्तु ही नहीं रखा। धर्म अब पैतृक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, देशी धर्म इत्यादि के रूप में परिणत हो गया है। अंत में किसी धर्म में विश्वास करना देशभक्ति का एक अंग हो जाता है और देशभक्ति सदा पक्षपाती होती है। विभिन्न धर्मों में सामंजस्य विधान करना बहुत ही कठिन काम है। फिर भी धर्मों में सामंजस्य की समस्या पर विचार किया जा सकता है। अब शीर्षक है क्या धर्मों में सार्वभौमिक तत्व है। प्रत्येक प्रचलित धर्म में तीन भाग होते हैं, दार्शनिक, पौराणिक और अनुष्ठानिक या कर्मकांड। दार्शनिक भाग में धर्म विशेष के मूल तत्व, उद्देश्य और उसकी प्राप्ति के साधन निहित होते हैं। पौराणिक भाग में स्थूल उदाहरणों द्वारा उस धर्म के दार्शनिक भाग को समझाया जाता है। इसमें मनुष्यों और अलौकिक पुरुषों के जीवन की कहानियाँ होती हैं। सूक्ष्म दार्शनिक तत्वों को काल्पनिक उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है। अनुष्ठानिक या कर्मकांड धर्म का स्थूल रूप होता है। इसमें पूजा पाठ, आचार अनुष्ठान, विविध शारीरिक अंग विन्यास, पुष्प, धूप, ध्वनि आदि नाना प्रकार की इंद्रिय ग्राह्य वस्तुएं होती हैं। इन्हीं के द्वारा अनुष्ठानिक धर्म के संगठन होता है। कोई धर्म दर्शन पर अधिक जोर देता है तो कोई किसी दूसरे को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। अब इन तीनों भागों पर यह विचार किया जाए कि क्या इनमें कोई सार्वभौमिक तत्व निहित है या नहीं। पृष्ठ संख्या 383। यदि दार्शनिक पहलू को ले तो सर्वप्रथम यह देखना होगा कि क्या कोई सार्वभौमिक दर्शन है या नहीं। विश्लेषण से यही पता चलता है कि प्रत्येक धर्म वाले अपने मतों की व्याख्या करके उसी को एक मान्य सत्य कहकर उसमें विश्वास करने के लिए आग्रह करते हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी आग्रह रहता है कि लोग उन्हीं की बातें माने, और यदि उनकी बात स्वीकार नहीं करते तो उनका विश्वास यह बन जाता है कि उनका मत स्वीकार न करने वाला दुर्गति को प्राप्त होगा। कुछ लोग तो अपना मत मनवाने के लिए तलवार तक काम में लाते हैं। शक्ति प्रदर्शित करके अपना मत मनवाने का उनका यह कार्य दुष्टता के कारण नहीं होता, वरन मानव मस्तिष्क प्रसूत धर्मांधता नामक व्याध विशेष की प्रेरणा से वे ऐसा करते हैं। संसार के दूसरे पागलों की भांति उनमें उत्तरदायित्व नहीं होता। यह धर्मांधता एक भयानक बीमारी है। मनुष्यों में जितनी दुष्ट बुद्धि है वह सभी धर्मांधता द्वारा जगाई गई है। अतः यह सिद्ध है कि कोई सार्वभौमिक दर्शन नहीं है। अब देखें कि क्या पुराणों में कोई समानता या एकता है? क्या कोई सार्वभौमिक तत्व इनमें निहित है? उत्तर है, निश्चय ही नहीं है। सभी धर्मों का अपना अपना पुराण साहित्य है, किंतु सभी कहते हैं केवल हमारी पुराणोक्त कथाएं उपकथा मात्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए ईसाई विश्वास करते हैं कि ईश्वर पंडुक, जो कि एक प्रकार का कबूतर है, का रूप धारण कर पृथ्वी में अवतरण हुआ था। उनके अनुसार यह ऐतिहासिक तथ्य है, पौराणिक कहानी मात्र नहीं। हिंदू लोग गाय को भगवती के आविर्भाव के रूप में मानते हैं। ईसाई कहता है कि इस प्रकार का विश्वास इतिहास नहीं है, यह केवल पौराणिक कहानी और अंधविश्वास मात्र है। यदि कोई कहता है कि हमारे अवतारों ने अनेक आश्चर्यजनक काम को किया तो दूसरा उसको अंधविश्वास कहता है। अतः कहाँ है पौराणिक सामंजस्य? इसके बाद कर्मकांड या अनुष्ठानिक भाग आता है। हर एक संप्रदाय की विशेष प्रकार की अनुष्ठान पद्धति होती है। अनुयायी उसी अनुष्ठान में विश्वास करते हैं और उसे धर्म संगत भी मानते हैं, उनमें विश्वास भी करते हैं, परंतु दूसरे के धार्मिक अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानते हैं। एक दूसरे के अनुष्ठान पद्धति की आलोचना भी करते हैं। उदाहरण के लिए ईसाइयों के लिए हिंदुओं की लिंगो उपासना में व्यवहार आने वाली मूर्ति अति कुत्सित है, और हिंदुओं के लिए ईसाइयों का सैक्रेमेंट विभत्स है। इस प्रकार प्रतीको उपासना की दृष्टि से देखे तो कोई ऐसा सार्वभौमिक प्रतीक नहीं है जिसे सब धर्म वाले स्वीकार कर सकें। इसलिए अनुष्ठानिक या पूजा पद्धति में भी कोई ऐसा सार्वभौमिक तत्व नहीं है जिसे सभी स्वीकार कर सकें। फिर वही प्रश्न उठता है कि किसी भी प्रकार का सार्वभौमिक तत्व कहाँ है? सार्वभौमिक धर्म या विश्व धर्म किस प्रकार संभव है? अब अगला शीर्षक है, सार्वभौमिक धर्म पहले से ही विद्यमान है। इसके अंतर्गत विश्व बंधुत्व का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सार्वभौमिक तत्व धर्मों के किसी भाग में तो नहीं है, यह सच है, किंतु यह पहले से ही विद्यमान है। प्रश्न है कैसे? इसके लिए उन्होंने अनेकता में ही एकता को या समता को ढूंढ निकाला है। कुछ धर्म वाले धर्मों में एकता के लिए विश्व बंधुत्व की बात अवश्य करते हैं, परंतु उनके अनुसार विश्व बंधुत्व एक छलावा है, क्योंकि इसके नाम पर लोग दल या संगठन बनाते हैं। तो इसका मतलब यह हो जाता है कि जो इस संगठन में नहीं है वे बंधु नहीं हैं। फिर कहाँ रहा विश्व बंधुत्व? पृष्ठ संख्या 384। उनके शब्दों में हम सभी लोग समान हैं, इसलिए हम लोग एक दल का संगठन करें, ऐसा कहा जाता है। परंतु ध्यान रहे, ज्यों ही तुमने किसी दल का संगठन किया त्यों ही तुम समता के विरुद्ध हो गए, और तब समता नामक कोई चीज तुम्हारे पास नहीं रह जाएगी। अर्थात जो मुसलमान नहीं है वह भ्रात संघ में शामिल नहीं होगा, या जो ईसाई नहीं है वह भ्रात संघ में नहीं होगा। ऐसे ही अन्य धर्मों के लोगों के विषय में भी कहा जा सकता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि संघ या दल में स्वार्थपरता छिपी रहती है। विश्व बंधुत्व की भावना से परिपूरित लोग तो मानव जात के प्रति बंधुता से परिपूर्ण होते हैं। वे सबसे प्रेम और सहानुभूत करते हैं, किसी संघ विशेष से नहीं। अतः विश्व बंधुत्व के इस सिद्धांत में भी सार्वभौमिक तत्व नहीं परिलक्षित होता। सार्वभौमिक तत्व का पता लगाना कठिन अवश्य है, परंतु यह तो निश्चित है कि हमारे बीच वर्तमान है। यह सार्वभौमिक तत्व है मनुष्य का मनुष्य होना, उसमें मानवता का पाया जाना। अब अगला शीर्षक है, समता का सिद्धांत। इसमें ईश्वर सार्वभौमिक तत्व है? हम मनुष्य तो अवश्य हैं, परंतु क्या सभी समान हैं? जिस प्रकार कुछ लोग विश्व बंधुत्व का नारा लगाकर सार्वभौम धर्म का दावा करते हैं, जो एक ढोंग या स्वार्थपरक तत्व है, उसी प्रकार समता का सिद्धांत भी सार्वभौम धर्म के लिए आधार नहीं है, क्योंकि निश्चय ही हम सब समान नहीं हैं। यदि समानता होती तो असमानता क्यों विद्यमान रहती? कौन कहता है हम सब समान हैं? केवल पागल? क्या हम बल बुद्धि में समान हैं? एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा बलवान है, एक मनुष्य की बुद्धि दूसरे की अपेक्षा अधिक है। यदि हम सब लोग समान ही होते तो यह असमानता कैसी? किसने यह असमानता उपस्थित की? हम लोगों की क्षमता, विद्या बुद्धि और शारीरिक बल में अंतर होने के कारण निश्चय ही पार्थक्य है। पार्थक्य होते हुए भी मनुष्यत्व के आधार पर समता और यह समता का सिद्धांत हमारे हृदय को स्पर्श करता है। मनुष्य मनुष्य में विभेद होते हुए भी सभी मनुष्य हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व रूपी सामान्य तत्व है। यह सामान्य तत्व कहाँ है? इसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं, मैंने जिस किसी काले या गोरे स्त्री या पुरुष को देखा, उन सबके मुँह पर सामान्य रूप से मनुष्यत्व का एक अमूर्त भाव है। मैं उसे पकड़ भले न सकूं, फिर भी मैं निश्चय पूर्वक जानता हूं कि वह है। यदि किसी वस्तु का असंदिग्ध अस्तित्व है, तो इसी मानवीयता का जो हम सब में व्याप्त है, इसी के द्वारा लोगों को स्त्री और पुरुष के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार विभिन्न मनुष्यों में समानता का तत्व मनुष्यत्व के रूप में है, उसी प्रकार विश्व धर्म के संबंध में भी यही बात है। जो ईश्वर रूप से पृथ्वी के सभी धर्मों में विद्यमान है, यह अनंत काल से वर्तमान और अनंत काल तक रहेगा। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिग्राणा इव, यह गीता से है। अर्थात मैं इस जगत में मणियों के भीतर सूत्र की भांति विद्यमान हूँ। इस एक मणि को एक विशेष धर्म मत या संप्रदाय कहा जा सकता है। पृथक पृथक मणियाँ एक एक धर्म हैं और प्रभु ही सूत्र रूप से उन सब में वर्तमान है, परंतु लोग इससे अनभिज्ञ हैं। पृष्ठ संख्या 385। अब एक टिप्पणी है कि बहुत्व में एकत्व का सिद्धांत वैषम्य अनिवार्य है। अनेक धर्मों का अस्तित्व आवश्यक है। संपूर्ण साम्यभाव विनाश है। स्वामी विवेकानंद का मत है कि विश्व धर्म का यदि यह अर्थ हो कि एक प्रकार के विशेष मत में संसार के सभी लोग विश्वास करें, तो यह सर्वथा असंभव है। यह कभी नहीं हो सकता। ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब सब लोगों का मुंह एक रंग का हो जाए। और यदि हम आशा करें कि समस्त संसार एक ही पौराणिक तत्व में विश्वास करेगा, तो यह भी असंभव है। यह कभी नहीं हो सकता। फिर समस्त संसार में कभी भी एक प्रकार की अनुष्ठान पद्धति प्रचलित हो नहीं सकती। हाँ, इतना अवश्य है कि हम बहुत्व या वैचित्र्य या वैषम्य में एकत्व का होना मान सकते हैं। यह सृष्टि का विधान है। मनुष्य होते हुए भी हम परस्पर पृथक हैं। स्त्री पुरुष भिन्न हैं। फिर मनुष्य के नाते स्त्री पुरुष एक ही हैं। मनुष्य और जीव जंतु भिन्न हैं, किंतु प्राणी होने के नाते स्त्री पुरुष जीव जंतु सभी समान हैं। सत्ता के परिप्रेक्ष्य में विराट विश्व के साथ एकत्व है। ईश्वर दृष्टि में तो हम सभी एक हैं, परंतु प्रपंच जगत में भेद विद्यमान है और रहेगा। यदि यह वैषम्य भेद या विचित्रता न रहे और संपूर्ण साम्य भाव हो जाए, तो अवश्य विनाश हो जाएगा। उदाहरण के लिए समान परिणाम और संपूर्ण भाव से विकिरण होना ही ताप का धर्म है। मान लो इस घर का सारा ताप उस तरह विकिरण हो जाए, तो ऐसा होने पर वस्तुतः ताप जैसी कोई चीज बाकी न रहेगी। इस संसार की गति किसके लिए संभव होती है? खोए हुए संतुलन के लिए। जिस समय इस संसार का ध्वंस होगा, उसी समय चरम साम्य आ सकेगा, अन्यथा ऐसा होना असंभव है। केवल इतना ही नहीं, ऐसा होना विपज्जनक भी है। हम सभी लोग एक प्रकार का विचार करें, ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। ऐसा होने से विचार करने की कोई चीज न रह जाएगी। सारांश यह है कि यही मित्रता या वैषम्य, विचित्रता और संतुलन का भंग होना ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी से हमारा चिंतन बनता है। इसी सिद्धांत के आधार पर स्वामी विवेकानंद धर्मों की अनेकता की सिद्धि करते हैं। हमें एकता के सिद्धांत की तरह अनेकता के सिद्धांत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अनेक धर्म अपने अपने दर्शन, पुराण और कर्मकांडों द्वारा एक ही ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। मनुष्य चाहे जितने प्रकार के सत्य की उपलब्धि करे, उसका प्रत्येक सत्य भगवान के दर्शन के सिवा और कुछ नहीं है। मान लो हम जल पात्र लेकर जलाशय से जल भरने आए, कोई कटोरी लाया, कोई घड़ा लाया, कोई बाल्टी लाया इत्यादि। अब जब हम अपने जल भर लिए तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक पात्र के जल ने स्वभावतः अपने अपने पात्र का आकार धारण किया है, परंतु प्रत्येक पात्र में वही एक जल है जो सबके पास है। इससे बहुत में एकत्व का सिद्धांत ही सिद्ध हो रहा है। धर्म के संबंध में भी उपयुक्त उदाहरण सत्य सिद्ध हो रहा है। हमारे मन भी उन्हीं पात्रों के समान हैं। हम सभी ईश्वर प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं। पात्रों में जो जल भरा हुआ है, ईश्वर उसी जल के समान है। प्रत्येक पात्र में भगवत दर्शन उस पात्र के आकार के अनुसार है, फिर भी वे सर्वत्र एक ही हैं। वे घर घर में विराजमान हैं। सार्वभौमिकता का भी परिचय इसी से हो सकता है। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि बहुत्व में एकत्व है, जीवन में वैषम्य अनिवार्य है। इसीलिए अनेक धर्मों का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। पृष्ठ संख्या 386। समता के सिद्धांत का अर्थ संपूर्ण साम्य भाव नहीं, वह तो विनाश है। इसका अर्थ है अनेकता में एकता, समता अर्थात ईश्वर सम रूप से सभी धर्मों में निहित है। सबका लक्ष्य ईश्वर दर्शन है। यही सार्वभौमिक भाव है। सार्वभौमिकता का यही आधार है। संसार के सभी धर्म सत्य हैं। इसे भी लोग स्वीकार करने लगे हैं। यह भी सार्वभौमिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परंतु इसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। स्वामी विवेकानंद की योजना के अनुसार कुछ मार्गदर्शन इस प्रकार किए गए हैं। अब अगला शीर्षक है धर्म समन्वय या सार्वभौमिक धर्म के लिए कार्य योजना। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है कि संसार के सभी धर्म सत्य हैं। यह तो अनेकों ने स्वीकार किया है, परंतु उन सबको एकत्र करने का उन्होंने कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाया जिससे वे इस समन्वय के भीतर रहते हुए भी अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रख सकें। वही उपाय यथार्थ में कार्यकारी हो सकता है जो किसी धर्मावलंबी व्यक्ति की विशिष्टता को नष्ट न करते हुए उसको औरों के साथ सम्मिलित होने का पथ बता दे। परंतु अब तक धर्मों के समन्वय के जितने प्रयास हुए हैं, उनमें धर्म संबंधी सभी दृष्टिकोणों को समाहित कर लेने के संकल्प के बावजूद कार्य रूप में उन्होंने सभी धर्मों को कुछ मतवादों में जकड़ देने की चेष्टा की है। फलस्वरूप उनसे परस्पर कलह, संघर्ष और प्रतियोगिता करने वाले अनेक नए संप्रदायों की ही सृष्टि हुई है। संबंध में स्वामी जी की कार्य योजना इस प्रकार है। इसमें पहला बिंदु है, कुछ विनाश न करो, गठन करो। पहला कार्य धर्म समन्वय के लिए यह होना चाहिए कि किसी धर्म विशेष का कुछ भी विनाश न करें। जो मूर्ति पूजक हैं उनकी आस्था तोड़कर सुधार न करें। मूर्ति भंजनकारी सुधारक लोग संसार का उपकार नहीं कर सकते। किसी वस्तु को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, वरन उसका गठन करो। यदि हो सके तो सहायता करो, यदि सहायता न कर सको तो अनिष्ट मत करो। जब तक मनुष्य कपटहीन रहे तब तक उसके विश्वास के विरुद्ध एक भी शब्द न कहो। दूसरा बिंदु है, जो जहाँ पर है उसको वहीं से ऊपर उठाने की चेष्टा करो। धर्मों में समता का आधार ईश्वर है। यदि यह सत्य है कि ईश्वर सब धर्मों का केंद्र स्वरूप है और हम में से प्रत्येक एक एक व्यसाध्य से उसकी ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम सब निश्चय ही उस केंद्र में पहुँचेंगे और सब व्यापारों के मिलन के स्थान में हमारे सब वैषम्य दूर हो जाएंगे। परंतु जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते तब तक वैषम्य कदापि दूर नहीं हो सकता। सब धर्म ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। अपने अपने स्थान और स्वभाव के अनुसार उस ईश्वर की ओर लोग बढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र पर पहुँचने के लिए वृत्त के अर्ध भाग से जो जहाँ है यदि वहाँ से चलेगा तो वही या केंद्र पर पहुँचेगा। कहावत भी है कि सब रास्ते में पहुँचते हैं। अतः धर्म के लिए संघर्ष और युद्ध करना अज्ञानता है। सभी धर्मों का लक्ष्य वही केंद्र या ईश्वर है। जो जिस धर्म में है वहीं से बढ़ने की चेष्टा करे। पृष्ठ संख्या 387। अब बिंदु तीसरा है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति को स्वयं ही शिक्षा लेनी होगी। व्यक्ति की उन्नति उसके भीतर होगी। स्वामी विवेकानंद ने व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसके आध्यात्मिक या धार्मिक उन्नति की बात की है। इस संबंध में उनका कहना है कि तुम इस धारणा को त्याग दो कि तुम किसी को आध्यात्मिक बना सकते हो। यह असंभव है। तुम्हारी आत्मा को छोड़ तुम्हारा और कोई शिक्षक नहीं है। यह स्वीकार करो, फिर देखो क्या फल मिलता है। समाज में हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखते हैं। संसार में सहस्रों प्रकार के मन और संस्कार के लोग वर्तमान हैं। उनका सब संपूर्ण सामान्यकरण असंभव है। परंतु हमारे व्यवहारिक प्रयोजन के लिए उनको चार श्रेणियां में विभक्त किया जा सकता है। कर्मठ व्यक्ति, भावुक व्यक्ति, योग मार्गी व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति। यदि किसी धर्म को अधिकांश लोगों के लिए उपयोगी होना है तो उसमें इन सब भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए उपयुक्त सामग्री जुटाने की क्षमता होनी चाहिए। और जहाँ इस क्षमता का अभाव है वहाँ सभी संप्रदाय एक देशीय हो जाते हैं। अतः ऐसी दशा में स्वामी विवेकानंद एक सार्वभौमिक धर्म की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि मैं एक ऐसे धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ जो सब प्रकार की मानसिक अवस्था वाले, जैसे कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग, लोगों के लिए उपयोगी हो। इसमें ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म संभाव में रहेंगे। भक्ति, ज्ञान, योग, कर्म का समन्वय सार्वभौमिक धर्म का अत्यंत निकटतम आदर्श होगा। भगवान की इच्छा से यदि सब लोगों के मन में इस ज्ञान, योग, भक्ति और कर्म का प्रत्येक भाव ही पूर्ण मात्र में और साथ ही संभाव में विद्यमान रहे, तो मेरे मत में मानव का सर्वश्रेष्ठ आदर्श यही होगा। अब अगला शीर्षक है, योग ही सार्वभौमिक धर्म का आदर्श होगा। विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए, जिनका वर्गीकरण चार भागों में किया गया है, यही एक आदर्श है। योगी ही ईश्वर साक्षात्कार करता है, उसे किसी धर्म विशेष में आबद्ध नहीं किया जा सकता। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म के माध्यम से ईश्वर से युक्त होता है, वह कर्म योगी जो प्रेम और भाव से पूर्ण ईश्वर को प्राप्त करते हैं, वह भक्ति योगी जो रहस्यवाद के द्वारा इस योग का साधन करते हैं, वह राजयोगी और जो ज्ञान विचार के बीच इस योग का साधन करते हैं, उन्हें ज्ञान योगी कहा जाता है। योगी कहने से भी चार प्रकार के स्वभाव वाले योग के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इन चार प्रकार के योग की व्याख्या निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। अब इसमें पहला है राजयोग। टिप्पणी है, राजयोग मनस्तव विषय का योग है। मनस्तव के विश्लेषण से ही एकत्व को प्राप्त किया जा सकता है। हम लोगों के लिए ज्ञान लाभ का केवल एक ही उपाय है, निम्नतम मनुष्य से लेकर सर्वोच्च योगी तक को उसी उपाय का अवलंबन करना पड़ता है। यह उपाय है एकाग्रता। यह एकाग्रता जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक मनुष्य ज्ञान लाभ करेंगे। कारण यही ज्ञान लाभ का एकमात्र उपाय है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, अर्थ का उपार्जन हो, चाहे भगवद आराधना हो, जिस काम में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, वह कार्य उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। द्वार के निकट जाकर बुलाने से या खटखटाने से जैसे द्वार खुल जाता है, उसी भांति केवल इस उपाय से ही प्रकृति के भंडार का द्वार खुलकर विश्व में प्रकाश की धारा प्रवाहित होती है। राजयोग में केवल इसी विषय की आलोचना है। पृष्ठ संख्या 388। सारांश यह है कि राजयोग में मन के नियंत्रण और एकाग्रता से ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। यही राजयोग का विषय है। यह ऐसा विधान, पद्धति या मार्ग है जो किसी भी धर्म को स्वीकार हो सकता है, और यह एक देशीय या धर्म विशेष न होकर सार्वभौमिक धर्म का एक उत्तम मार्ग माना जा सकता है। अब दूसरा है कर्म योग, अर्थात कर्म द्वारा ईश्वर लाभ। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका स्वभाव केवल चिंतन राज्य में ही एकाग्र नहीं होता, वरन उनका मन एकाग्र होता है, जिसे आँखों से देखा जा सकता है। और हाथों से किया जा सकता है, परंतु हमें कर्म के रहस्य का ज्ञान नहीं होता। कर्मयोग इस रहस्य की व्याख्या करता है और कहाँ किस भाव से कार्य करना होगा, प्रस्तुत कर्म में किस भाव से हमारी समस्त शक्ति का प्रयोग करने से सर्वापेक्षा अधिक लाभ होगा, इसकी शिक्षा देता है। कुछ लोग कर्म के विरुद्ध यह आक्षेप लगाते हैं कि कर्म दुखजनक होता है। इस संबंध में स्वामी जी का उत्तर है कि सब दुख और कष्ट आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। इसका समाधान यह है कि अनासक्त भाव से केवल कर्म के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म योग की यही शिक्षा है। कर्म योगी कर्म करते हैं, कारण यह उनका स्वभाव है। वे अनुभव करते हैं कि ऐसा करना ही उनके लिए कल्याणप्रद है। इसको छोड़ उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता। वे संसार में सदा दाता का आसन ग्रहण करते हैं, कभी किसी वस्तु की प्रत्याशा नहीं रखते। इसी कारण वे दुखों से मुक्ति पाते हैं। सारांश में दुख से मुक्ति या आत्मलाभ जो अध्यात्म या धर्म का परम लक्ष्य है, वह कर्मयोग से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मयोगी स्वभाव के लोग इस मार्ग का अनुसरण करके ईश्वर लाभ या मोक्ष लाभ कर सकते हैं। अतः कर्मयोग भी सार्वभौमिक धर्म का एक भाग है। यह भी किसी एक धर्म या धर्म विशेष का स्वरूप नहीं है, वरन सार्वभौम धर्म के अंतर्गत ही आता है। तीसरा है भक्ति योग। भावुक स्वभाव वाले लोगों के लिए भक्ति योग है। भक्त भगवान से प्रेम करना चाहता है। धार्मिक क्रियाकलापों से तथा पुष्प, गंध, सुरम्य मंदिर, मूर्ति इत्यादि नाना प्रकार के द्रव्यों से संबंध रखते हैं। भक्ति योग भक्त को निःस्वार्थ भाव से प्रेम करने की शिक्षा देता है। इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता, न लोकेषणा, न पुत्रेषणा और न ही वित्तेषणा। भक्ति योग कहता है केवल ईश्वर को अथवा जो कुछ मंगलमय है केवल उसी से कर्तव्य समझकर प्रेम करो। प्रेम ही प्रेम का श्रेष्ठ प्रतिदान है और ईश्वर ही प्रेम स्वरूप है। ईश्वर सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शास्ता और माता पिता है। यह कहकर उसके प्रति हृदय की सारी भक्ति और श्रद्धा अर्पित करने की ही शिक्षा भक्त योग देता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यक्ति किसी धर्म का क्यों न हो, यदि वह भावुक स्वभाव का है तो ईश्वर को वह भाव रूप में, प्रेम रूप में देखता है। भक्त योग सार्वभौम धर्म का ही एक रूप है। उनका आग्रह है कि यदि कोई भक्त की आलोचना करता है, वह यह नहीं जानता कि ईश्वर उनके या भक्त के निकट मूर्त वस्तु है, वही एकमात्र सत्य वस्तु है। उसे वे अनुभव करते हैं, उससे वे बात सुनते हैं, उसे वे देखते हैं, उससे वे प्रेम करते हैं। पृष्ठ संख्या 389। अब चौथा है ज्ञान योग। ज्ञान योगी चिंतक होता है, विचार करता है। वह दृश्य जगत के परे जाना चाहता है। वह संसार की तुच्छ वस्तुओं को जो क्षणिक और नाशवान हैं उनसे संतुष्ट नहीं होता। संसार की कोई वस्तु उनको संतुष्टि नहीं दे सकती। ज्ञानी की आत्मा लौकिक जगत के पार जो सब अस्तित्व का सार है उसी में डूब जाना चाहती है, सत्य के स्वरूप को प्रत्यक्ष करना चाहती है, उस विराट सत्ता के साथ एकाकार हो जाना चाहती है। वे सोचते हैं भगवान उनके प्राणों के प्राण आत्मा की आत्मा है, भगवान उनकी ही आत्मा है, भगवान को छोड़कर और कोई भी वस्तु नहीं है। उनका समुदाय नश्वर अंश विचारों के प्रबल आघात से चूर्ण विचूर्ण होकर उड़ जाता है। अंत में जो सचमुच ही विद्यमान रहता है वही स्वयं भगवान है। ज्ञान योग जीवात्मा को अज्ञान के गर्त से निकालकर आत्मा में मिल जाने का संदेश देता है। ज्ञान योग मनुष्य से कहता है कि तुम्ही स्वरूपतः भगवान हो। यह मानव जाति को प्राणी जगत के बीच यथार्थ एकत्व दिखा देता है। हममें से प्रत्येक के भीतर से प्रभु ही इस जगत में प्रकाशित हो रहा है। अत्यंत सामान्य पद दलित कीट से लेकर जिसको हम सविस्मय हृदय की श्रद्धा भक्ति अर्पित करते हैं उन श्रेष्ठ जीवों तक सभी उस एकमात्र भगवान की अभिव्यक्तियाँ हैं। सारांश यह है कि ज्ञान योग विचार और चिंतन के माध्यम से स्वविवेक जागृति कर व्यक्ति को अपने सदस्वरूप में स्थिर करता है। ईश्वर से साक्षात्कार का अर्थ आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि एक ही आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है, उसका ज्ञान होना ही आत्म साक्षात्कार है। ज्ञान योग तत्वमसी का ज्ञान प्राप्त करता है। सार्वभौमिक धर्म का यह रूप विवादों और संघर्षों से परे है। अब अगला शीर्षक है बात नहीं योगों को कार्य में परिणत करना ही धर्म है। अंत में स्वामी विवेकानंद ने अपने निर्दिष्ट सार्वभौमिक धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि इन सब विभिन्न योगों को हमें कार्य में परिणत करना ही होगा। केवल उनके संबंध में जल्पना कल्पना करने में कुछ न होगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, पहले उनके संबंध में सुनना पड़ेगा, फिर श्रुत विषयों पर चिंता करनी होगी। हमें उन सबको अच्छी तरह विचार पूर्वक समझना होगा जिससे हमारे मन में उनकी एक छाप पड़ जाए। इसके बाद उनका ध्यान और उपलब्धि करनी पड़ेगी। जब तक कि हमारा समस्त जीवन तद्भाव भवति न हो उठे। स्वामी विवेकानंद का योग धर्म सार्वभौमिक धर्म होगा और यह अत्यंत व्यवहारिक होगा। व्यवहारिक होने के कारण यह केवल कुछ धारणाओं और मतवादों की पोटली अथवा बौद्धिक कल्पना भी नहीं रहेगा। यह यथार्थ धर्म होगा और यथार्थ होने के नाते परिवर्तित भी नहीं होगा। ऐसा धर्म अनुभूति का धर्म होगा। आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करना ही धर्म है। यह सुनने या मान लेने की चीज नहीं है। यह धर्म मन प्राण विश्वास की वस्तु के साथ एक हो जाएगा। अध्याय 24 समाप्त।